ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिक कारणों से दिया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ के गिरोह का पर्दाफाश कर 1,78,00,000 रुपए कीमत के 357 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 5 सदस्य हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, विद्युत और वित्त समेत 13 विभाग अपने पास रखे हैं। सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य, शहरी विकास और समाज कल्याण सहित 8 विभागों का प्रभार सौंपा गया है। श्री गोपाल राय सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, वन और वन्य जीव समेत 3 विभागों का कामकाज संभालेंगे। श्री कैलाश गहलोत को परिवहन, प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, गृह तथा महिला और बाल विकास विभाग दिया गया है। श्री मुकेश अहलावत के पास श्रम एवं रोजगार सहित 5 विभाग होंगे। श्री इमरान हुसैन खाद्य और आपूर्ति तथा चुनाव का कामकाज देखेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सहित पार्टी के मुख्य नेताओं ने आज नई दिल्ली के जंतर मंतर में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिक कारणों से दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है और उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल में पूरी ईमानदारी से काम किया। इसके अतिरिक्त श्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया और कहा कि वो उन सभी आरोपों को समाप्त करने में लगे हुए हैं।
मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के, कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल। मैं आज सब लोगों का
आम आदमी पार्टी की जनसभा को एक नाटक करार दिया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल का एक और नाटक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ये सब दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है। भाजपा सांसद ने कहा कि श्री केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, सिर्फ मुकदमा लंबित है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि श्री केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि न्यायालय ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं, जिसका जवाब श्री केजरीवाल को देना होगा। स्वच्छता ही सेवा पहल के तहत दिल्ली नगर निगम ने दक्षिण क्षेत्र में 45 से अधिक खाद्य संचालकों और रेस्तरां प्रतिनिधियों के लिए कूड़े के बंटवारे और प्रबंधन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। निगम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता और प्रथाओं को बढ़ाना था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाने के लिए कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य केंद्र सांकेतिक भाषाओं द्वारा उत्पन्न एकता और उन्हें भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में संरक्षित करने की आवश्यकता को उजागर करना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 का विषय है सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए साइन अप करें। विश्व गेंडा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेंडों की सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उन कार्यकर्ताओं की सराहना की जो पिछले कई वर्षों से गेंडों के संरक्षण के प्रयासों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद गर्व की बात है कि भारत बड़ी संख्या में एक सींग वाले गेंडों का घर है। उन्होंने असम में काजीरंगा की अपनी यात्रा को याद किया और सभी से वहां भी जाने का आग्रह किया। सरकार ने देश भर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए दाखिला ले चुके विद्यार्थियों को 1 करोड़ से अधिक रुपए लौटाने की सुविधा प्रदान की है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज बताया कि 656 से अधिक विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करके कोचिंग केंद्रों और निजी संस्थानों से अपनी धनराशि लौटाने की मांग की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया कि सरकार उपभोक्ताओं, विशेषकर जिन विद्यार्थियों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना कीमती समय और संसाधन का निवेश किया है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के प्रति समर्पित हैं। उन्होंने कहा कि ये कदम सरकार की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि है कि कोचिंग संस्थान उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान और निष्पक्ष कार्यप्रणाली सुनिश्चित करें। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश भर के प्रभावित विद्यार्थियों को विभाग के हस्तक्षेप के बाद मुकदमेबाजी के पहले चरण में ही इन सभी रिफंड पर तुरंत कार्रवाई की गई।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर पिछले 12 महीनों में छात्रों की तरफ से 16,276 शिकायतें मिली थी। इनमें से ज्यादातर शिकायतें छात्रों ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ गलत वादे करने, पाठ्यक्रमों को रद्द करने और नामांकन शुल्क वापस नहीं करने से संबंधित थी। इसमें कोचिंग फीस के तौर पर जमा किए गए 2,39,00,000 रूपये के करीब विवादित मामले सामने आए थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने विशेष अभियान चलाकर छात्रों को लगभग 1 करोड़ रूपये बिना मुकदमे के वापस दिलाए। इस अभियान के माध्यम से बेंगलुरु के एक छात्र को 3.5 लाख रुपए और गुजरात के एक छात्र को 8,36,000 रुपए की धनराशि वापस मिली। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ऑनलाइन खरीदारी के लिए सरकारी पोर्टल GeM ने खरीदारी को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था को और अधिक समावेशी बनाने के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए शुल्क को कम कर दिया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब 10 लाख रुपए तक की खरीद पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपए ही थी। 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक की खरीद पर अब केवल 0.30% शुल्क देय होगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद पर 3 लाख रुपए का एक समान शुल्क लगेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय सरकार की 100 दिनों की पहल का हिस्सा था। GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि लगभग 97% लेन देन को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सी विजिल ऐप पर मिली शिकायतों का समाधान 100 मिनट के भीतर किया जा रहा है। इस ऐप पर सबूत के तौर पर ऑडियो, वीडियो और फोटो भेजे जा सकते हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि नागरिकों की जागरूकता के कारण हरियाणा में 16 अगस्त से 22 सितंबर तक 12,011 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 11,122 शिकायतें वैध पाई गई हैं और उन पर नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि इस ऐप पर कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत कर सकता है। ये शिकायत चुनाव प्रक्रिया के दौरान कभी भी की जा सकती है। चुनाव अधिकारी ऐप की लगातार निगरानी करते हैं और उचित कदम उठाते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय संसद कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिड़ला CPA भारत क्षेत्र के अध्यक्ष भी हैं। सम्मेलन से पहले CPA भारत क्षेत्र कार्यकारी समिति की बैठक होगी। सम्मेलन का विषय सतत और समावेशी विकास में विधायी समितियों की भूमिका है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आज एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ के गिरोह का पर्दाफाश कर 1,78,00,000 रूपये कीमत के 357 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किये। पुलिस ने इस गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ से पता चला कि ये आरोपी आंध्र प्रदेश और ओडिशा से मादक पदार्थ लाकर दिल्ली और एनसीआर में आपूर्ति करते थे। पुलिस ने बताया कि उन्होंने इस मामले में आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और तस्करी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया है। 4 दिन तक चले इस खाद्य महोत्सव का आरंभ 19 सितंबर को हुआ था। इस आयोजन में 90 देशों, 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 18 केंद्रीय मंत्रालयों तथा सहयोगी सरकारी निकायों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता का संगम रहा है। हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
वर्ल्ड फूड इंडिया के इस तीसरे संस्करण में 40 से अधिक सत्र आयोजित किए गए, जिनमें राज्यों और देश विदेश के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों से संबंधित चर्चाएं की। इस आयोजन में जापान भागीदार देश था और वियतनाम तथा ईरान इस आयोजन के फोकस देश थे। पहले दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO गोयल में सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में उद्योग और सरकार के बीच की दूरी को कम करने और उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबरॉय ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि खाद्य महोत्सव के द्वारा स्टार्टअप्स और उपयोगकर्ताओं को एक मंच प्रदान हुआ।
निफ्टम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक इंस्टीट्यूट है, विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जो कुंडली में लोकेटेड है। तो एक तरह से एक निफ्टम को मंत्रालय की बदौलत, मंत्रालय की वजह से एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी आउटरीच बढ़ाने का, जो शायद हमें नहीं मिल पाता अगर WFI ऑर्गेनाइज नहीं होता। तो मिनिस्ट्री के, क्योंकि हम मिनिस्ट्री का एक अभिन्न अंग है।
कार्यक्रम में पौधों पर आधारित उत्पादों के एक प्रदर्शक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस आयोजन में उन्हें ग्राहकों और अधिकारियों से जुड़ने में मदद मिली।
नमस्कार, मैं विनय उपाध्याय फ्रॉम फ्लेविंग रेड प्रोडक्शन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हम बॉम्बे बेस्ड स्टार्टअप हैं। हम प्लांट प्रोटीन्स पे काम करते हैं, जहां पे हम कचरे कूड़ा से प्रोटीन्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करके उनके केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके हम अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने बहुत सहयोग किया है इस एग्जीबिशन में और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसी तरह से हमारा सहयोग बनाए रखें। इस एग्जीबिशन के आने के बाद में हम काफी कस्टमर्स को मिले हैं, काफी पार्टनर्स को मिले हैं, जिनके साथ में हम ग्लोबल रीच एक्सपेक्ट करते हैं, जहां पे हम हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बना के एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्रीज की अलग अलग बॉडीज को हम मिले हैं, चाहे वो कंप्लायंस हो, रेगुलेटरी हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, फैसिलिटेट करने के हिसाब से भी बैंकर्स को भी हम मिले हैं। तो ये एग्जीबिशन हमारे लिए काफी लाभदायक रहा है इन टर्म्स ऑफ कमिंग एंड एग्जीबिटिंग।
भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण भी वर्ल्ड फूड इंडिया के संयोजन में आयोजित किया गया। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण में वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने को रेखांकित किया गया। सुमित साहा की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली में आज विभिन्न क्षेत्रों में मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नैतिक कारणों से दिया। और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हो गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।